अलार्म बजने पर प्रीति की आंखें खुली। वो बुआ के सामने एक अच्छी बहू बनकर दिखाना चाहती थी। उसकी माँ ने भी कहा था कि एक अच्छी बहू की तरह व्यवहार करना। जैसे ही अलार्म बजा, उसने मुश्किल से आंखें खोली और अलार्म बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ फोन नहीं लगा। उसने अच्छे से आंखें खोलकर देखा, फोन साइड टेबल पर था और वो उससे काफी दूर थी। वो अपनी जगह से हटकर प्रदीप मेहता के बगल में आ चुकी थी। वो अपनी जगह पर इकट्ठा होकर सो रहा था। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था कि वो प्रदीप मेहता के बिल्कुल नज़दीक सोई हुई थी। वो अपनी जगह से उठी और उठकर बाहर चली गई। उसने देखा कि बुआ उससे पहले ही जाग रही थीं। गुड मॉर्निंग बुआ जी, प्रीति ने कहा। आओ बेटा आओ। आप इतनी जल्दी उठ गईं, प्रीति ने कहा। रात जल्दी सो गई थी इसीलिए जल्दी आँख खुल गई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ हम दोनों के लिए, कहती हुई प्रीति किचन में चली गई। दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रही थीं। बुआ प्रदीप और वरुण के बचपन के किस्से सुना रही थीं और प्रीति उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। प्रदीप मेहता उठा, उसने बाहर उन दोनों को बातें करते देखा, उसे भी अच्छा लगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रीति प्रदीप के लिए भी चाय ले आई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम्फर्टेबल थे। अच्छा ठीक है, कहो क्या कहना है, जानवी ने कहा। मगर जल्दी कहना, मुझे कॉलेज जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, बात ऐसी है, जयराज कहने लगा। केवल तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से ही नहीं निकाला था, मॉम डैड सभी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, उनसे भी बात नहीं हो सकी। युग तो कहता होगा मुझे मॉम के पास जाना है, मगर किसी को मेरा फ़ोन नहीं लगा। मैंने प्रदीप मेहता से भी पूछा था, उसने कहा घर पर कोई नहीं है, मॉम डैड जहाँ नहीं है। फिर मैंने उससे नहीं पूछा, क्योंकि मैं समझ गई थी जब तक तुम नहीं चाहोगे युग मुझसे नहीं मिल सकता, जानवी ने कहा। जयराज जानवी के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था, वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर सिंघानिया, तुम मुझे ये मत बताओ कि क्या हुआ, ये बताओ कि तुम किस लिए आए हो, तुम बिना कारण के यहाँ नहीं आए हो। जानवी मेरी बात सुनो, वो कहने लगा। वो जानवी से बात करना चाहता था, मगर वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। देखिए, अब जो मैंने देखा वो तो झूठ नहीं था। खुशी निकली थी तुम्हारे रूम से और तुम नशे में थे। मेरे घर से जाते ही तुम इन्जॉय करने निकल पड़े थे, और ऐसा तो मैंने शादी से पहले भी देखा था। एक बार भी तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा। पता तो चल गया होगा तुम्हें कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या कहोगे अब, तुम्हें मुझसे तलाक ही तो लेना होगा, क्या कहानी है। जानवी की आंखों में आंसू आ गए थे, जो उसने साफ किए और फिर वहां से जाने लगी। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक क्लियर कैसे होगा, तुम क्या बताओगे मुझे, कौन सी सच्चाई बदल जाएगी कि मैंने जो देखा वो मेरी नज़रों का धोखा था, जहां तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, जब मॉम डैड ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे झूठ नहीं सुनना है मिस्टर सिंघानिया। वो अपने कमरे में गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा कि वो खुद पर खुद चला जाएगा। वो बेड पर जाकर लेट गई। अनीक अपनी माँ के साथ रेणुका के घर आया हुआ था। रेणुका कॉलेज के लिए निकल रही थी। कॉलेज आ रही हो बेटा, अनीका की माँ ने पूछा। जी आंटी। अनीक, जाओ रेणुका को कॉलेज छोड़कर आओ, उसकी माँ ने कहा। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। छोड़ आएगा, चली जाओ तुम, रेणुका की माँ ने भी कहा। ठीक है, आ जाओ, रेणुका को उसकी बात माननी ही पड़ी। अनीक वर्मा ने जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रेणुका उसके साथ बैठ गई। जब तुम्हारा मन करता है मुंह उठाकर चले आते हो, क्या काम है इतनी सुबह सुबह, अब ब्रेकफास्ट भी रोज मेरे ही घर पर करोगे क्या। ब्रेकफास्ट तो तूने मुझे कराया नहीं, इतना स्मार्ट बंदा तुम्हारा ड्राइवर बन रहा है और तुम्हें क्या चाहिए, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्मार्ट बनने की। रेणुका पूरे रास्ते उस पर गुस्सा निकालती रही और वो मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। कॉलेज के आगे गाड़ी रुक गई, वो दोनों उतर गए। तुम किस लिए उतर रहे हो, जाओ जहाँ से आए हो, वो कॉलेज के अंदर जाने लगी, मगर अनीक उसके पीछे आ रहा था। तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, ऐसे ही कॉलेज घूमने, सोच रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, वो उसके साथ अंदर आ गया। जब रेणुका कॉलेज के अंदर जा रही थी, अनीक उसके साथ था। लड़कियाँ उसे घूर घूर कर देख रही थी। आजकल की लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है, अब इसमें देखने वाली इसमें कौन सी बात है, लड़के नहीं देखे क्या किसी ने, तुम्हें जलन हो रही है, अनीक ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जलन, माय फुट, मुझे जलन क्यों होगी। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होगी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है, कहती हुई वो अपनी क्लास में चली गई और अनीक वहीं रुक गया। जानवी को बेड पर लेटे लेटे भूख लग गई थी। उसे लगा दो घंटे हो चुके हैं, जयराज पक्का चला गया होगा। उसने अपना दरवाज़ा खोला, उसे लिविंग रूम में कोई नहीं देखा। आज मेड भी नहीं आई थी, उसे कुछ खाने को नहीं मिला। उसने मैगी उठाई और बनाने लगी। मैगी बनाकर प्लेट में डालकर सोफे पर आकर बैठ गई। चम्मच तो दो, ले आती। अचानक जयराज बालकनी की साइड से आया। तुम यहीं हो अभी तक, जयराज उसके साथ आकर बैठ गया। उसने जानवी के हाथ से चम्मच पकड़ा और मैगी खाने लगा। अच्छी मैगी बनाती हो तुम। सीरियसली मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको जाने के लिए कह दिया है और आप फिर भी नहीं जा रहे। जयराज बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ बैठा था। उसका कंधा जानवी के कंधे से लग रहा था। उसने अपना चेहरा जानवी के गाल के नज़दीक किया और बिल्कुल उसके कानों में बोला, ऐसे तो इरादा नहीं है छोड़कर जाने का। उसके एकदम नज़दीक बोलने से जानवी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। वो भी जानवी की नीली आंखों में देख रहा था। फिर एकदम से जानवी को होश आया और वो खड़ी होने लगी। जय ने मैगी की प्लेट टेबल पर रखी और उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। वो सीधा जयराज की गोद में जाकर गिरी और जयराज ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जानवी ने उठने की कोशिश की मगर उसने उसे उठने नहीं दिया। कमाल है, एक खूबसूरत लड़की गोद में हो और उसे कौन उठने देता है। वो उसके होठों के नजदीक जाने लगा। पहले तो जानवी को समझ नहीं आया, फिर उसने अपना हाथ अपने होठों पर रख लिए।